તારીખ 16/12/1993 શ્રી સમયસાર કલષ્ટિકા શ્લોક નંબર 123 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 162
સ્વરૂપ લીધું છે, જ્ઞાની ને આશરો નથી એમ સમજાયું છે. સમ્યક દર્શન બોલે છે જ્ઞાની કો આશરો નહીં હોતા હૈ તો સમ્યક દર્શન કા મૂલ્ય કિતના. સમ્યક દર્શન કા પ્રભુત્વ કિતના ઓર સમ્યક દર્શન સે ફાયદા કિતના. સમ્યક દર્શન કો સમજે તો સમ્યક દર્શન કે લિયે પ્રયાસ ચલે. ધીરોધાર મહિમની અનાદિ નિધને બોધે નિબંધન ધૃતિં ત્યાજ્ય શુદ્ધ નયો ન જાતુ પ્રતિભિઃ સર્વં કશપ કર્મણ તત્રસ્થા સ્વમરીચિ ચક્રમ પ્રચિરાત સમરત્ય નિર્યત બહિ પૂર્ણ જ્ઞાન ગણો એકમચલમ પશ્યંતિ શાંતમ મહા. અર્થ કૃતિ ભઈ જાતો શુદ્ધનયા ત્યાજ્ય નહીં સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવો કે દ્વારા સૂક્ષ્મ કાલ માત્ર ભી શુદ્ધ ચૈતન્ય માત્ર વસ્તુ કા અનુભવ છોડને યોગ્ય વિસ્મરણ કરને યોગ્ય માને પરિણામ મે સે અભાવ કરને યોગ્ય નહીં. નિરંતર શુદ્ધોપયોગ કહાં સે રહેગા? ઉસકા મતલબ કે પરિણતિ જો હૈ અનુભૂતિ કી પરિણતિ હૈ વો અનુભૂતિ કી પરિણતિ સમ્યક દ્રષ્ટિ કો એક સમય ભી છૂટતી નહીં હૈ. અગર છૂટ જાય તો સમ્યક દર્શન છૂટ ગયા, અનુભૂતિ છૂટ ગઈ, અનુભવ છૂટ ગયા તો સમ્યક દર્શન છૂટ ગયા. ક્યો કે અનુભૂતિ ઓર સમ્યક દર્શન કી સમવ્યાપ્તિ હૈ, એક સાથ અવિનાભાવી રહેતે હૈ. અનુભૂતિ હોતી હૈ વા સમ્યક દર્શન હોતા હૈ, અનુભૂતિ ચલી ગઈ તો સમ્યક દર્શન નહીં રહેતા, શ્રદ્ધા ટૂટ જાતી હૈ. ઇસલિયે એક સમય ભી સમ્યક દ્રષ્ટિ અપના શુદ્ધ ચૈતન્ય વસ્તુ કા અનુભવ છોડતા નહીં હૈ. છોડતા નહીં હૈ ઇસલિયે છોડને યોગ્ય નહીં હૈ, ઇસલિયે છોડતા આત્મ સ્વરૂપ મે બુદ્ધ એટલે બુદ્ધ સ્વરૂપ આત્મા લીધો. આત્મ સ્વરૂપ મે અતિન્દ્રિય સુખ સ્વરૂપ પરિણતિ કો પરિણામ આતા હૈ. સુધને ક્યા હૈ કે સુખ સુખ કા અનુભવ ભી લે આતા હૈ. સુધને માને અકેલી જ્ઞાન કી પર્યાય ઉતના હી નહીં, જ્ઞાન કે સાથ સુખ ભી હૈ. સુખ ઇસલિયે લેતે હૈ, ઇધર સુખ ઇસલિયે લેતે હૈ સુખ કા પ્રયોજન હૈ, જીવ કો સુખ કા પ્રયોજન હૈ. સમજ આવે છે ને? દો તીન અર્થ શું કર્યો છે ખંડા મહિમા કર્યો. 114 પછી 125 છાપ્યું છે એમાં, એટલે હું પાછળ ગયો. મિસપ્રિન્ટ છે પાછળ, 114 આવ્યું એટલે બે મિસપ્રિન્ટ લાગે છે, ત્યાં 113 આવ્યું. પણ ભાવ અર્થ છે, સીધો લે છે ને તો અધ્યાત્મ પ્રધાન ટીકા છે, એટલે અર્થ અધ્યાત્મ પ્રધાન કરે છે. જ્ઞાન ઓર સુખ, સ્થિરતા ઓર સુખ, શ્રદ્ધા ઓર સુખ, ઇસમેં સુખ કી પ્રધાનતા હૈ. હર જગહ સુખ કી પ્રધાનતા કરતે હૈ, પ્રયોજન સુખ કા હૈ ને, ઇસલિયે તો. तो ज्ञान श्रद्धा स्थिरता वो कोई अध्यात्म का विषय नहीं कि इसमें उसमें उसका फर्क इतना निकालते हैं. जैसे सुगानी जी ने क्या लिखा कि मुझे ज्ञान की वांछा नहीं है, सुख की वांछा है, सुख की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत नहीं, ज्ञान की अपेक्षा नहीं, सुख की अपेक्षा है. क्योंकि वो एक गुण ऐसा है कि जो आत्मा को आत्मा में खींचता है, खिंचाव आने का उसमें एक मैग्नेटिक पावर है, हाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ऐसे. आत्मस्वरूप में अतीन्द्रिय सुख स्वरूप परिणति को परिणमाता है. कैसा है बोध, बोध मैंने आत्मा कि धीरोदार महिम निशाश्वत धारा प्रवाह रूप परिणमनशील, ऐसी है महिमा बढ़ाई जिसके ऐसा है. दीर्घ का अर्थ लिया शाश्वत और उदार्थ का अर्थ लिया धारा प्रवाह रूप परिणमनशील. कैसा है आत्मा का तो शाश्वत है और उसका परिणमन भी धारावाही चलता है, इसलिए इसकी महिमा बहुत है. क्योंकि परिणमन में थकता नहीं और अस्तित्व में से कभी नास्तित्व होता नहीं, ऐसा. और कैसा है कि अनादि निधन, नहीं है आदि नहीं है अंत जिसका, ऐसा है. तो एक ऐसी एक शाश्वतता और अनादि अनंतता ऐसी आत्मा के प्रतीति आ जाए, उसको फिर किसका भय होगा. जब मैं शाश्वत रहने वाला हूं, ऐसी प्रतीति आने से वो जीव किसकी परवाह करेगा. व्यवहार तो आत्मा में है ही नहीं, मेरे में है ही नहीं. टूट जाएगा तो मेरे से बाहर टूटेगा क्या, क्या टूट जाएगा तो मेरे से बाहर कुछ भी हो, सारे दुनिया में उथल पथल होती है, अपने को क्या लेना देना है? एक श्रीमद जी ने 23 के साल में एक वचन लिखा है, 23 के साल में, यथा योग्य उपशम आने से, क्या यथार्थ उपशम आने से जीव को, आत्मा को संसार और मोक्ष दोनों में समवृत्ति रहती है। पत्र तो लिखा है मनसुख राम सूर्य राम को। मनसुख राम सूर्य राम वेदांत के बड़े विद्वान थे, फिर भी उनको कुछ वैराग्य की उदासीनता की जचती थी और अध्यात्म की बात भी जचती थी। कुछ ऐसे कारण से उनके साथ पत्र व्यवहार चालू रखा है उन्होंने कि उसको और ढलन हो जाए, इस लाइन की, अध्यात्म लाइन की और ढलन हो जाए। तो लिखते लिखते वो लिख दिया है कि यथायोग्य उपशम तो आएगा जब तो संसार और मोक्ष में भी समवृत्ति हो जाएगी हमारी, लेकिन आज हमारी वो स्थिति नहीं है। 23 के साल में लिखते हैं ना, आज हमारी वो स्थिति नहीं है। हम उसके अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ चालू है, लेकिन वो स्थिति आई नहीं है। समवृत्ति मैंने ये मोक्ष अच्छा है और संसार अच्छा नहीं है, राग द्वेष वो विषम वृत्ति है। मोक्ष अच्छा तो राग हुआ, संसार अच्छा नहीं तो द्वेष हुआ। तो राग करने का स्थान नहीं है, प्राप्त करने का अवश्य है, लेकिन राग करने का स्थान नहीं है। राग से प्राप्त होता नहीं, पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। वितराग मार्ग में तो मोक्ष का राग भी छुड़ाया है। क्या मोक्ष का राग भी छुड़ाया है? मोक्ष सारो, संसार नहीं सारो। वो एक मर्यादा है, इस स्टेज की भी एक मर्यादा, इससे आगे जाने का है। क्या उपशम क्यों लिया? यथा योग्य उपशम ऐसा क्यों लिया कि प्रथम उपशम सम्यक दर्शन होता है, तो मोह भी उपशम हुआ तब उपशम सम्यक दर्शन बोला ना। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है। क्या सम्यक दर्शन तो तीनों में सामान्य है, उपशम, क्षय उपशम और क्षायिक, लेकिन मोह का उपशम तो उपशम सम्यक दर्शन बोला। मोह का क्षय उपशम दर्शन मोह का, तो उसको क्षय उपशम सम्यक दर्शन, दर्शन मोह का क्षय तो उसको क्षायिक सम्यक दर्शन बोला। सम्यक दर्शन का उपशम नहीं है, तो विशेषण लगता है सम्यक दर्शन कि ये उपशम सम्यक दर्शन, लेकिन सम्यक दर्शन उपशम नहीं है। सम्यक दर्शन क्षोपशम नहीं है, सम्यक दर्शन क्षायक नहीं है, सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है। बात ऐसी है कुछ। तो जो उपशम हुआ, जिस भाव का उपशम हुआ, वो यथा योग्य कब हुआ? कि सम्यक दर्शन होने से हुआ। अब सम्यक दर्शन में क्या हुआ कि सम्यक दर्शन में अपनी आत्मा संसार और मोक्ष से रहित है ऐसा अपना स्वरूप श्रद्धान में आया। कैसी श्रद्धा हुई सम्यक दर्शन में? कैसा दर्शन हुआ कि मेरी आत्मा संसार परिणाम और मोक्ष परिणाम 320 में आता कि नहीं आता? बंध और बंध का कारण, मोक्ष और मोक्ष का कारण से रहित हूं मैं। निष्क्रिय हूं, निष्क्रिय इति को अर्थ है। निष्क्रिय का अर्थ इधर क्या करते हैं आप? तो आचार्य महाराज जयसेन आचार्य देव कहते हैं कि निष्क्रिय का अर्थ मैं ये कहता हूं कि बंध और बंध का कारण, मोक्ष और मोक्ष का कारण, दोनों प्रकार के, चारों प्रकार के परिणाम का अभाव स्वरूप हम निष्क्रिय कहते हैं। आत्मा मोक्ष को भी नहीं करता, आत्मा मोक्ष को भी नहीं करता, द्रव्य मोक्ष को नहीं करता है। तो कार्य तो है मोक्ष, तो मोक्ष तो एक कार्य है, और कार्य भी एक षट कारक में से एक कारक है, है? कर्म कर्म नाम का कारक है ना, कर्म मैंने कार्य, कार्य मैंने कर्म, तो एक कारक तो स्वयं है, एक और दूसरा नहीं हुआ ऐसा कभी बनता है, एक इधर जावे एक उधर जावे ऐसा मैंने क्या। हाँ, ये बात तो आचार्य की फाइनल है ना, ये तो जयसेन आचार्य की बात फाइनल है कि मैं तो निष्क्रिय हूँ, मैंने द्रव्य तो निष्क्रिय है और मोक्ष तो कार्य है, फिर इसका कर्ता कौन के मोक्ष का कर्ता मोक्ष मैं नहीं। मोक्ष का कर्ता आत्मा होवे तो बंध का कर्ता भी आत्मा ही हो जाए, तो आत्मा कभी बंध से रहित हो सकता क्योंकि कर्ता कर्म अभेद होता है हमेशा, वो तो बराबर न्याय है, वो तो न्याय है। और ये विज्ञान है, वस्तु का स्वरूप है, विज्ञान है वो वस्तु का स्वरूप है, न्याय से भी वो सॉलिड है, वस्तु का जो स्वरूप है विज्ञान है वो न्याय से भी बलवान प्रमाण है, ऐसे बात है। આમ શું છે, સીધું એમ સમજાય છે કે આ સમ્યક દર્શન આવવું છે, આ સમ્યક દર્શન આવવું છે, કેમ કે વિશેષણ સમ્યક દર્શન ને લાગ્યું ને તેનું વિશેષ સમ્યક દર્શન થઈ ગયું છે, અનુભવ પ્રધાનતા છે એસે લેતે ઇસ વાતમાં, યે તો થોડા વ્યાકરણ કી દ્રષ્ટિ સે લિયા કે કિસી ક્ષાયોપ સમયક સમ્યક દ્રષ્ટિ કો કોઈ પૂછે કે આપકો અપના આત્મા કા શ્રદ્ધાન કૈસા હૈ, કોઈ કમી હૈ ઇસમેં, તો ના બોલેગા કે નહીં, મેરા જો उपशम में तो बात करने का प्रसंग नहीं है क्योंकि तो निर्विकल्प दशा में होता है, अब क्षोपशम में और क्षायिक वाला बात कर सकता है, तो क्षायिक वाला में तो कोई सवाल नहीं रहता, उनको तो शंका की गुंजाइश भी नहीं है। अब क्षायोग समीक सम्यक दृष्टि को कोई पूछे कि आपको भीतर में कहीं उंडे उंडे शंका है क्या श्रद्धा के विषय में, बिल्कुल नहीं, ऐसा जवाब देगा शायक जैसा कि सम्यक दर्शन मैंने सम्यक दर्शन, शायक सूक्ष्म में कोई अंतर नहीं है। गुरुदेव तो बहुत आगे के समर्थ बात करते थे कि एक त्रियंज का सम्यक दर्शन और सिद्ध परमात्मा का सम्यक दर्शन, जिसको क्षायिक होता है, त्रियंज को क्षायिक नहीं होता है, दोनों सम्यक दर्शन के हिसाब से समान है। क्या लेते थे, सम्यक दर्शन के हिसाब से समान है, ऐसा नहीं लेते थे कि उसका क्षयोक्षम है उसको क्षायिक, ऐसा नहीं लेते थे, क्योंकि सम्यक दर्शन ऐसा नहीं होता है, ये मोह का उपशम, मोह का क्षयोक्षम और मोह का क्षय की बात है, ये परिणाम दूसरे हैं, ये परिणाम दूसरे हैं। अभाव तो तीनों में है, सद्भाव किसी में नहीं होता, अभाव तो तीनों में है, लेकिन कितना अभाव है दूसरी बात है। यहाँ तो सम्यक दर्शन जो पॉजिटिव साइड है वो नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिवली तीनों सरके हैं, इसलिए कहा कि सम्यक दर्शन होता है तो प्रथम तो उपशम होता है, तो उपशम होते ही यथा योग्य उपशम हो गया, इसको क्या बोला, सम्यक उपशम कहो या यथा योग्य उपशम कहो, दोनों एक बात है, सादी भाषा में लिया है वो सामने वाला वेदांती है, इसलिए कब होता है कि उसको संसार और मोक्ष दोनों में समवृत्ति रहा करती है। वो पूर्व अवसर में लिया, भाव मोक्षे पण शुद्ध वर्ते संभाव जो, शत्रु मित्र वर्ते प्रत्ये वर्ते समदर्शिता, मानव माने पण ते स्वभाव जो, जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता, जीवन मरण में हमको कुछ ज्यादा अधिक नहीं है, भाव मोक्ष है, पर शुद्ध वर्ते संभाव जो तो संसार मोक्ष ले लिया रे भाव मैंने संसार शुद्ध संभाव वर्ता है। क्यों? सम्यक दर्शन हो गया है इसलिए ये यथा योग्य उपशम हुआ। प्रगट परिणमन है हमारा, ये हमारा प्रगट परिणमन है, ऐसी बात है। नहीं, द्वेष का नहीं चलता है, फिर भी द्वेष का नहीं चलता है। जो होता है अनुभव में आता है वो दर्शाते हैं, जो अनुभव में आता है वो बताते हैं। तो क्या आप अपने अनुभव को बताओ, इसमें राग द्वेष क्या? आप ये कहेंगे कि ये सफेद कपड़ा है, इसमें राग द्वेष क्या है? और ये कलर है ब्लू कलर का, तो इसमें राग द्वेष क्या? तो जैसा है उतना ऐसा बताया। अच्छा, अस्थिरता से जो अंश आता है कि मैं यहाँ से छूटूं, वो तो बाह्य परिणमन है, पर उसका भी ज्ञाता, दुख का भी ज्ञाता वो अंतरंग परिणमन है। मुख्य परिणमन तो अंतर वाला है, वो कुछ अंश में वो नहीं चाहिए ऐसा जो होता है उसका उधणी नहीं है, स्वामित्व नहीं है, ऐसे बात है। अपनत्व नहीं है उसमें, इसलिए वो अपना नहीं गिना जाता है। और कैसा है शुद्ध नहीं कि कर्मणाम सर्वम कषः ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल पिंड का अथवा राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध परिणामों का मूल से क्षय करणशील है। जो शुद्ध नहीं है यानी स्वानुभूति है, शुद्ध नहीं माने क्या? जो स्वानुभव के परिणाम है वो क्या करता है कि राग भाव कर्म और द्रव कर्म, कर्म नाम में दोनों ले लिया, मूल थी सर्वम कषः, मूल से उसका क्षय करने वाला है, क्षोभम करने वाला नहीं है, क्षय करने वाला है, उसका क्षय करे ऐसा इसका स्वभाव है, शील मैंने स्वभाव, क्षयकरणशील है। तत्रस्थाः शांतम वहाः पश्यन्ति, तत्रस्थाः शुद्ध स्वरूप अनुभव में मग्न है जो शेष उसमें स्थिर है, तत्र मैंने वहां स्था मैंने स्थिर है, तत्र मैंने वहां स्था मैंने स्थिर, वहां स्थिर है, वहां मैंने क्या कहा कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव में जो मग्न है, स्थिर है, लीन है, जम गया है, वे शांतम वह सर्व उपाधि से रहित ऐसे चैतन्य द्रव्य को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। अनुभव में क्या होता है कि जो शांत स्वरूप अपना आत्मा है उसका प्रत्यक्ष, उसको प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है, परमात्मा की प्रत्यक्ष प्राप्ति। क्या? जिसके आगे बड़ी चीज कोई नहीं है, इससे बड़ी कोई चीज है? परमात्मा से आगे कौन है? कोई नहीं, उसमें भी निज परमात्मा वो अनुभव में प्राप्त होता है, आत्मा में लीन होने से उसकी प्रत्यक्ष प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन के काल में क्या है कि निज परमात्मा की प्रत्यक्ष प्राप्ति, ऐसी बात है। जैसा वेदन सर्वज्ञ वितराग जिनेश्वर परमात्मा को प्रत्यक्ष है, ऐसा ही वेदन है। ससंवेदन में क्या फर्क है? एक जाति है, तारतम्य भेद है, जाति भेद नहीं है। लीनता की बात लिए ना, तो यहाँ तो लीनता की बात यह है, जो मग्न है तत्रस्था भावार्थ इस प्रकार है कि परमात्मा पद को प्राप्त होते हैं। देखो ये बात लिया है, परमात्मा पद को वहां प्राप्त होते हैं। क्या क्या? सर्व उपाधि से रहित शांतम भाव, भाव इतने तेज थाय से आम तो यहाँ अर्थ करो से चैतन्य द्रव्य, शांतम इतने सर्व उपाधि से रहित नास्तिक करो से शांत 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 आत्मा है, वही परमात्मा है। शांत आत्मा की प्राप्ति मैंने परमात्मा की प्राप्ति, कितनी शांति कि जिसकी हद नहीं है उतनी शांति, कितनी हद नहीं है उतनी। ज्ञान को देखने का भाव हुआ कि मेरे में शांति कितनी है, क्या ज्ञान को भाव हुआ, क्योंकि देखता देखने का काम तो जानने का काम तो ज्ञान ही करता है, तो उसको विचार आया कि मैं देखूं तो सही मेरे में शांति कितनी है। तो देखने में गया, अंदर में घुसा तो उसको तलवा हाथ में आया नहीं, क्या बॉटम नहीं मिला उसको, शांति का समुद्र लहराता था उसका नीचे, कितना भी नीचे गया है नहीं, कहां से मिलेगा उतनी शांति है उसमें अब किसकी चिंता करना है, देखो किसकी उपाधि करना, किसकी चिंता करना है, और करने से क्या हो सकता है। वो शांति भी कैसी है, अमृतमयी सुधामयी शांति है, ऐसी शांति है कि जिसका स्वाद छोड़ने को पुसाता नहीं है, ऐसी शांति है। हाँ, परमात्मा पद आत्मा आवे से हम कैसे सम्यक दर्शन निर्विकल्प दशा में मग्न होते हैं तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अब इतना बड़ा साक्षात्कार हो जाए इसके लिए कौन पुरुषार्थ नहीं करेगा ऐसा कौन होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा ऐसी बात है कि जिस प्रथम अनुभव में परमात्मा का साक्षात्कार, मैं परमात्मा ऐसा साक्षात अनुभव हो जाए उसके लिए कौन मुमुक्षु लालायत नहीं होवे, बताइए है?
पागल ही होगा
फिर तो उसको पागल ही कहना पड़े या मूर्ख कहना पड़े, और क्या कहना पड़े। भावार्थ इस प्रकार है,
शांति आनंद में सुख
अनुभव उसका नहीं हुए इसके पूर्णम असंख्यात प्रदेश ज्ञान विराजमान है। कैसा है चैतन्य द्रव्य, कैसा है महा मैंने महान तेज पूर्ण आत्मा, कैसा है कि परिपूर्ण है, परिपूर्ण कैसा है कि असंख्यात प्रदेश ज्ञान विराजमान है। हमारे एक एक प्रदेश में केवल ज्ञान विराजमान है, एक एक प्रदेश में, एक प्रदेश माने कितना एरिया होगा, एक परमाणु छोटा सा छोटा जिसमें है, जिसका दो भाग हो सकता नहीं, जिसमें दूसरा विभाजन नहीं कर सकते, उतना जो क्षेत्र है वहाँ केवल ज्ञान भरा है और अनंत शांति भी वहाँ भरी है, अनंत सुख भरा है, सुख निधान है, सुख धाम है, बहुत भरा है। विश्वास आना चाहिए जैसे कोई डॉक्टर के दवा में विश्वास करता है, कोई नहीं करता है, ऐसे भगवान के बोध में कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता है। अगर हमने विश्वास नहीं किया, अभी तक हमने विश्वास नहीं किया तो हम भटकते रहे। विश्वास आएगा तो भटकना बंद हो जाएगा। क्यों? सुख कहीं नहीं है, और कहीं जगह सुख
नहीं है।
मैंने पूरे प्रदेश में ऐसा कोई अनुभव करके कहते हैं, कोई अनुभव की बात सुन करके कहते हैं, उतना फर्क है उसमें। क्या एक दृष्टांत आता है सम्यक ज्ञान दीपिका में कि एक कुत्ता ने चोर को किसी के घर में घुसता हुआ देख लिया। रात के टाइम में खिड़की खुली रह गई थी, खिड़की मैंने बारी बारी ने कई लोग खड़की की, आपने खड़की ने दरवाजा कैसे बड़े लोगों बारी के, खिड़की खुली रह गई थी और चोर वहां से घुस रहा था। क्या कुत्ता ने देख लिया तो भौंकने लगा। वो भौंकने लगा तो बाजू के इलाका में जो बगल वाली गली थी, उस गली में भी एक दूसरा कुत्ता ने सुना कि ये जो भौंकता है वो किसी को देख कर भौंकता है, तो वो ऐसा ही भौंकने लगा। क्या होता है कि एक कुत्ता भौंकता है तो दूसरा को जगा देता है, तीसरा ऐसे बहुत भौंकने लग जाते हैं तो लोग जग जाते हैं कि कुछ है, कोई आदमी को देख कर ये भौंकता है। रात को इतना ज्यादा कौन भौंकता है? एक साथ पांच सात कुत्ते क्यों भौंकने लग गए? उसका झगड़ा होता है तो उसका भौंकना अलग होता है, और किसी के पीछे भौंकना होता है तो अलग होता है कि नहीं होता है?
अलग होता है।
तो फिर लोग जग जाते हैं। अब एक कुत्ता जो चोर को देख करके भौंकता है और भौंकने वाले को सुन करके दूसरा भौंकता है, उसका भौंकने का स्टाइल तो एक ही है लेकिन भाव में अंतर है दोनों को। अंतर है कि नहीं है? ऐसे अनुभवी पुरुष प्रत्यक्ष आत्मा को करके बता बोलते हैं आत्मा की बात, और ऐसी सुनी हुई बात को नकल करके कोई बताते हैं। दोनों बात एक सी लगती है दिखने में लेकिन भाव में अंतर बहुत है।
तो अनुभव नहीं मिलेगा,
वो तो है, वो चीज अनुभव की है, इसलिए बिना अनुभव में कैसे मिलेगा? या है ही नहीं, वहां से कहां से मिलेगा? मापे तो असंख्य प्रदेशी छे, मापे तो 20 बार नो ताको, 20 हांदा छे, 20 टुकड़ा छे, एक ताको छे। एम आत्मा एक अखंड प्रदेशी है, लेकिन एरिया को नाप किए जाए, एक परमाणु से नाप किए जाए तो असंख्य परमाणु को रखना पड़े तो पूरा नाप आ जाए। ऐसा और कैसा है कि ज्ञान घनोगम चेतना गुण का पिंज है, पुंज है, निविड़ ज्ञान का पुंज है। ज्ञान शांति का तो तलवा नहीं ले सका लेकिन अपना भी नहीं ले सका। फिर ज्ञान में अपने में भीतर में देखा कि मैं तो देखो मेरा अंत कहाँ आता है, नहीं आया, नहीं मिला उसको, खुद का भी अंत नहीं मिला। कितना ज्ञान भरा है, कहीं भी बॉटम उसका है
नहीं, तो ज्ञान का अंत
नहीं मिला। ज्ञान को ज्ञान का अंत नहीं मिला, एक ही गुण का, किसी एक गुण का भी अंत नहीं मिला, क्योंकि है ही नहीं, नहीं है तो कहां से मिलेगा। हम एक सर्कल का एक लकीर के सर्कल बना दें राउंड, फिर आपको एक प्रश्न करें कि लकीर कहां से चालू होती है बता दो, है उसका शुरुआत कहां से हुई बता दो, कहां से मिलेगा?
मैं तो कहीं से शुरुआत ही ना कहीं
और कहां पूरी होती है लकीर? होती है पूरी कहीं? तो जो है नहीं वो कहां से बताएगा? उतना ज्ञान भरा है। कितना ज्ञान भरा है? अनंत अनंत काल से वहां से खर्च हो रहा है, ज्ञान भंडार में से ज्ञान का खर्चा चालू है, लेकिन उसमें कमी भी हुई नहीं, एक अंश भी कमी नहीं हुई, अनंत में भाग में भी कमी नहीं हुई, उतना का उतना है, इंटैक्ट
इंटैक्ट।
कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता उसको क्या? नहीं नहीं नहीं, केवल ज्ञान को देखने को भेजा था, छदमस्तक का ज्ञान को देखने को नहीं भेजा था, केवल ज्ञान को देखने को भेजा था कि तुम एक एक गुण को देखो कितना कितना अंदर माल है, तो कि उतना भंडार भरा है एक एक गुण में कि किसी को नीचे तलवा दिखने में आता है, नहीं है ऐसा है, तो कि तुम्हारा तो देखो, तो कि मेरा भी नहीं है, ऐसी बात है। तो ऐसा स्वरूप को जिसको प्रत्यक्ष होता है, इतनी प्रत्यक्षता है, कितनी प्रत्यक्षता है, ये जो एक अंश वेदन प्रत्यक्षता है ना, अभी वेदन में ज्ञान ज्ञान का वेदन में
जी,
वो कहाँ से आती है? अनंत प्रत्यक्षता है भीतर में, अनंत 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 प्रत्यक्षता है, तो प्रत्यक्षता तो प्रत्यक्षता है, तो प्रत्यक्षता से मालूम पड़ती है, प्रत्यक्षता से मालूम नहीं पड़ती है। तो ऐसा आत्मा जिसको प्रत्यक्ष होता है उसका उपयोग उसमें थम जाता है, क्या होता है? थम जाता है, वो वहां से खिसक नहीं सकता चाहे तो भी। अरे अरे क्या है कि अद्भुतात अद्भुतम, वहां आश्चर्यकारी पदार्थ है, ऐसा है, तो उपयोग उसमें खिसक नहीं सकता, ऐसा हो जाता है। जैसे कोई आश्चर्य की चीज देखते तो क्या होता है, तो इससे कोई बड़ा आश्चर्य जगत में नहीं है, चैतन्य पदार्थ का ये सामर्थ्य जितना आश्चर्य जगत में कहीं
है
ही नहीं। चेतना गुण का पुंज है, और कैसा है कि एकम समस्त विकल्प से रहित निर्विकल्प वस्तु मात्र है, निर्विकल्प को विकल्प में कैसे लाएं, और जो भाषा विकल्प पूर्वक उत्पन्न होती है उसमें कैसे लाएं, वो तो सेकंड स्टेज हो गया, जो फर्स्ट हैंड में हाथ में नहीं आती वो सेकंड हैंड में हाथ में कैसे आएगी? हाँ, निर्विकल्प माने क्या, विकल्प रहित, वो तो परिभाषा बोल दिया, विकल्प रहित माने क्या, ये जो ज्ञान वेदन है वो वेदन स्वयं निर्विकल्प होता है, उसको वेदन को वेद करके समझ लो, अगर समझना हो तो वेदन वेदन को वेदन से समझो, वेदन को बिना वेदन समझा जाता है नहीं है। जैसे स्वाद है वो तो चखने से ही मालूम पड़ेगा, स्वाद कोई देखने से मालूम पड़ता है क्या? रसगुल्ले मीठे होते हैं और पीले जामुन भी मीठे होते हैं, लेकिन काला जामुन कोई कड़वा होता है क्या?
नहीं।
काला है ना, स्वाद में काला नहीं है, दिखने में काला है, तो स्वाद काला नहीं होता, स्वाद सफेद नहीं होता, स्वाद पीला
नहीं होता,
स्वाद का ज्ञान तो स्वाद ने से आता है, ऐसे निर्विकल्पता का ज्ञान भी वेदन से आता है, बिना वेदन निर्विकल्पता समझी जाती नहीं है, भावार्थ समझ ले, विकल्प रहित, विकल्प रहित मैंने कैसा कि जैसा निर्विकल्प वेदन है ऐसा वेदन को भेदो, यहाँ तो समय सार में तो ये बात आई है कि स्वाद का जो वेदन है, स्वाद का वेदन आता है ना, एक खट्टा है, तीखा है, मीठा है, तो स्वाद अलग है और ज्ञान वेदन अलग अलग है। खट्टा मीठा तो जानने का विषय है, वेदन का विषय नहीं है। क्या वो जानने में आता है कि ये मीठा है, ये कड़वा है, वेदन का विषय नहीं है। वह वेदने वाला तो अलग ही रहता है। स्वाद लेने के समय भी, स्वाद को जानने के समय भी वेदन वाला वेदन ज्ञान अलग रहता है, ज्ञान वेदन अलग रहता है। ठीक ऐसे ही असाता के वेदनीय उदय के काल में असाता के का ज्ञान होता है, वेदने वाला
अलग रहता है।
सिद्धांत तो अनुभव में, ऐसे सिद्धांत में अनुभव में आना पड़ता है। ऐसे वेदन के सिद्धांत में तो वेदन में आना पड़ता है। इसलिए तो परसों बात किया था कि आत्मा जो वेदन गम्य चीज है, क्या आत्मा जो वेदन गम्य चीज है उसको समझना होवे तो वेदन में आकर के समझो, ये इसकी विधि है। क्या बिना वेदन में आकर के शब्दार्थ से आत्मा को समझना वो ए विधि है। कहा था कि नहीं कहा था? वो विधि नहीं है किंतु अविधि है। अविधि से समझना नहीं, क्यों कि श्री गुरु वेदन में आकर के समझाते हैं, तो तुमको श्री गुरु की रीति से समझना है या उल्टी रीति से समझना है? श्री गुरु की विधि से समझना है क्या दूसरी विधि से समझना है? हाँ, वो तो वेदन में आकर के विधान करते हैं, विधान शब्द से लिया था, थे ना वो डॉक्टर साहब?
हाँ,
विधान नगर में रहते ना वो। तो विधि का विधान हुआ है, आत्मा का कथन है वो विधान है। विधान क्यों कहा? कि विधि पूर्वक कहा था इसलिए विधान कहा है। तो समझने वाले को भी विधि पूर्वक समझना है, वेदन से समझना है, बिना वेदन समझना
नहीं है।
प्रश्न एक हो सकता है कि पहले तो बाह्य दृष्टि से और बाह्य क्षोभ सबसे परलक्ष्य ज्ञान में ही समझे ने, फिर बाद में वो करे, हाँ ऐसा भी क्यों? पहले से ही ऐसा यथार्थ विधि में आकर के समझने की कोशिश क्यों नहीं करना? पहले हम उल्टी प्रैक्टिस करेंगे फिर सुल्टी प्रैक्टिस करेंगे, कोई काम करने का तरीका है क्या?
नहीं।
हाँ, ये कोई काम करने का तरीका है?
नहीं।
हाँ? गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। पहला उल्टा कर लो फिर सुल्टा करेंगे, कि उल्टा चला जाएगा, इतना ज्यादा उल्टा चला जाएगा कि फिर सुल्टा कहने वाले मिलेगा तो तू मानेगा
नहीं,
परिणाम ही क्या तो नहीं होता। ऐसी बात हो जाएगी। क्योंकि मिथ्यात का भी जोर होता है, इसका भी बल होता है, वैसे नहीं टूटता। निर्बल होता तो टूट जाता, नहीं टूटता इसका क्या कारण? बलवान है। कैसा है कि एकम समस्त विकल्प से रहित निर्विकल्प वेदन मात्र वस्तु है, और कैसा है कि अचलम कर्म संयोग के मिटने से निश्चल है। अपने पर्याय में भी कर्म संयोग मिट जाने से स्थिर हो जाता है। जहां तक कर्म संयोग है थोड़ा विचलित हुआ करता है, लेकिन स्वरूप से अचल है, और स्वरूप आश्रित जो कर्म का क्षय कर दिया तो मिटने से वो भी अवस्था में भी अचल हो जाता है। क्या करके ऐसे स्वरूप की प्राप्ति होती है कि स्वमरीचि चक्रम अचिरात संहृत्य, झूठे हैं भ्रम है मरीचि, मरीचि शब्द आए थे वो तो, मरीचि नाम नो राक्षस हो तो ना, सोना नो मृग थी हो तो ये मरीचि हो तो, रावण सीताजी नु हरण कर्यु त्यारे जे सोना नो मृग थियो ने ई मरीचि नाम नो राक्षस हतो, रामायण वाँच्यो एने खबर होय। अश्वमरीचि चक्रम छे, कहे छे फसाई जाय સીતાજી એવા સોના નો મૃગ જોયો, આ મૃગ લો લઈ આવો, આ હરણીયો બહુ સારું છે, સોનેરી છે, એકદમ સોનેરી, આપણે પાળીએ એને, લઈ આવો જઈને. તો માયાવી હતો, મરી ચો એટલો ભ્રમ હતો, એ તો તરત ખલાસ થઈ જાય, તો એ ગોતા જ કરે નહીં, અને માય ગમે એટલા જાય, એ થોડો દૂર ને દૂર જતો 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 અલગ થઈ જાય, એટલા દોડ્યા જ કરે પાછળ, ડિસ્ટન્સ વધી જાય. સ્વાનુભવી થે તો સ્વાનુભવી થે તો ક્યાં હોવા, કોઈ સ્વાનુભવી થે તો કિસ ગુણ સ્થાન મેં થે, કોઈ પરમાત્મા કે ગુણ સ્થાન મેં, વો લોગ માનતે હૈ કે પરમાત્મા થે, લેકિન ઇસ ગુણ સ્થાન મેં તો નહીં થે, ચોથે ગુણ સ્થાન મેં થે. झूठ है, भ्रम है, जो कर्म की सामग्री इंद्रिय शरीर आदि राग आदि में आत्मबुद्धि क्या है, कर्म की सामग्री मैंने संयोग, मकान, कीर्ति, आबरू, कपड़े, जेवर और शरीर और कुटुंब परिवार, उसमें आत्मबुद्धि और राग आदि में आत्मबुद्धि, उनको तत्काल मात्र विनाश कर, कैसा स्वरूप की प्राप्ति होती है, तो आत्मबुद्धि का विनाश करे, तब शरीर का विनाश करने की बात नहीं है, आत्मघात करने की बात नहीं है, सुसाइड करने की बात नहीं है, आत्मबुद्धि है उसको विनाश करने का है, जहां जहां आत्मा को छोड़कर आत्मबुद्धि की है, वो भ्रम है, वो झूठ है, उसका विनाश करने का है. અસ્તિત્વ અપને આપને મેં દિખતા હે, દૂસરે મેં શરીર મેં ભી નહીં દિખતા. હા, વેદજ્ઞાન કી કલા હૈ ને, વેદજ્ઞાન સે જુદા જુદા દિખતા હૈ, અપને અપન અપન દિખતા હૈ, અલગ અલગ દિખતા હૈ. उसका तत्काल विनाश कर, तत्काल मैंने फौरन विनाश करके, ये अनुभव होता है, वातक अनुभव, भ्रम बुद्धि रहे और अनुभव हुए ऐसा कभी बनता नहीं है. हाँ, अचिरात त्वरा, अचिरात इतने त्वरा, त्वरा इतने शीघ्र, शीघ्र मैंने अभी ही, कभी कभी पहले तो ये कर लो, पहले तो ये कर लो, वो बात नहीं है. क्या सुगानी जी से गुजराती सीखने को बैठे थे? गुरुदेव तो प्रवचन गुजराती में करते थे. भाव पकड़ते हैं उसको, भाषा का मुखी बाधा आती नहीं है बीच में. ऐसी बात है, भाव पकड़ने वाले को भाषा की बाधा नहीं आती. तिरियंज भी पकड़ लेता है, तिरियंज भी पकड़ता है. कैसा है मरीचि चक्र, कि बहिर निर्यत अनात्म पदार्थों में भ्रमता है. कहाँ भ्रमता है? जहाँ आत्मा नहीं है वहां अपनत्व करता है, उसी का नाम मरीचि चक्र है, उसी का नाम संसार चक्र है, उसी का नाम माया जाल है, और कुछ है
नहीं.
अच्छा, मृग मरीची बोले छे, ठीक, तो एम हे बोला राक्षस तुम ना मरीची हो तो ठीक है. अच्छा, बराबर, પાણી કા ભ્રમ, મરીચી મેને ભ્રમ, મરીચી નો શબ્દાર્થ ભ્રમ, મૃગ મરીચી, મૃગ ને ભ્રમ થાય છે, મગ નો ભ્રમ, મૃગ નો ભ્રમ. ભાવાર્થ ઇસ પ્રકાર હૈ કે પરમાત્મા પદ કી પ્રાપ્તિ હોને પર સમસ્ત વિકલ્પ મીટતે હૈ, કહી ભી અસમાધાન હોતા હૈ, એસા ક્યો? जब सब व्यवस्थित चलता है, पूरा विश्व व्यवस्थित चलता है, कहीं आश्चर्य करने की जगह नहीं है, नहीं है. विस्मय की जगह कोई नहीं है जगत में, क्योंकि हर पदार्थ की हर पर्याय परिपक्व काल में, जैसे फल पक कर के नीचे गिरता है वैसे पर्याय गिरती है, पदार्थ में से पर्याय बाहर आती है वो परिपक्व काल में आती है। ऐसे फल पक जाता है तो गिर जाएगा, ऐसे पर्याय पकेगी तो बाहर आ जाएगी, बस बात खत्म। इसलिए विस्मय का कोई स्थान जगत में नहीं है, कोई विकल्प नहीं रहता, कोई विस्मय नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता, कोई आश्चर्य नहीं होता। सर्वांग समाधान स्वरूप आत्मा का अनुभव हुआ तो सर्वांग समाधान स्वरूप आत्मा का अनुभव, एक अंग भी ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं हो, ऐसी बात है। कोई प्रश्न नहीं खड़ा रहता, क्यों? कि असमाधान नहीं है, असमाधान वाला कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता, क्योंकि समाधान आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, स्वयं व्यवस्थित है, इसका कोई अन्य व्यवस्थापक हो सकता? और अन्य अन्य का करे वो आउट ऑफ साइंस है, विज्ञान के बाहर की चीज है, हुए तो भी कर सकता नहीं, इसलिए होता नहीं है, ऐसी बात है। यहाँ तक रखें।